ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंध के आधार पर अध्याय 10 और 11 जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्री रामचंद्र की कथा सुनाते हैं, ये कथा संक्षिप्त में है लेकिन बहुत अर्थपूर्ण है। जो सामान्य मनुष्यों को भक्ति की शिक्षा देती है, रामचंद्र या कृष्ण भगवान दोनों में अंतर तो है ही नहीं, परम तत्व परम पुरुषोत्तम होते ही है, लेकिन कभी कभी मनुष्यों के लिए आदर्श जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कुछ मर्यादा में रहने के लिए ऐसा लीला करने आते हैं, फिर भी हम नासमझ होकर उनके चरित्रों में से कुछ सीख नहीं सकते। कहते हैं कि रामायण हमें जीने का सिखाता है, श्रीमद् भागवतम हमें मरने को सिखाता है। रामायण से हमें जीने का तरीका मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में हमें ये भौतिक दुनिया छोड़ के भगवान की दुनिया में प्रवेश करने को मौका देती है। हम तो जीते जी मरे हुए हैं, हम ज्यादा जी नहीं पाते और जीने में कितनी कठिनाई आती है क्योंकि जीना जानते नहीं। सिर्फ पेट के वास्ते जीने जीने को नहीं कहा, वो तो कुत्ते बिल्ली सबको जीना होता है और सब अपनी अपनी अवधि या मर्यादा का जीवन जीकर चले जाते हैं, लेकिन उसका पूछता कौन है। मनुष्य आता है जाता है तो दोनों बार पूछा होती है, किसका जन्म हुआ और कौन गया, लेकिन बीच वाली जो स्थिति है हम लापरवाही से न तो पूछने लायक जीवन जीते हैं, हम न तो आदर्श बनाते रहते, हम अपना अपना ढंग जो रामचंद्र या सीता जैसा जीवन जीने का हमें जो ये मनुष्य जीवन में मौका प्राप्त होता है उसका उपयोग करते ही नहीं, हम अपना नया प्रकार की लीला कर लेते हैं जो न तो रामायण में दिखनी मिलती है न तो भागवत में दिखनी मिलती है। तो ये जो जीवन है अपना, ये जीवन महामूला होता है, जीवन कोई ऐसे वैसे पैदा नहीं होता, कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पैदा करके इनको जीवन जीने का मौका देते हैं, लेकिन उसके पीछे संस्कार है ही नहीं, तो जीने का फायदा भी क्या। मनुष्य जीवन तो अपनी ऊर्ध्वगति यानी कि जो हमेशा उत्क्रांति कराता है ऐसा है। यदि पशु मरते भी उत्क्रांति करते हैं तो हम जीते उत्क्रांति के बजाय अधोगति में जा रहे हैं, उसका क्या। मनुष्य को चार गति दी है, अच्छे कर्म करके स्वर्गलोक तक जा सकता है, बुरे कर्म करके नरक लोक में जा सकता है। यदि कुछ बैलेंस बना रहे हैं तो फिर से मनुष्य जन्म में आता है। लेकिन चौथी गति ऐसी है कि जहां से आया है वहां पहुंचने की उसकी ताकत भी भगवान ने दी है। यदि इच्छा करे, यदि समझ हो, यदि उसकी जागृति फिर से हो जाती है तो अवश्य जा सकता है। तो चार चार गतियों में से कौन सी गति हम चुनते हैं वो अपनी सत्य हकीकत पर ही पता चलता है। इसीलिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत ये सभी धार्मिक ग्रंथ बने हैं, और उसमें हमें ऊपर उठाने के लिए हमारी जो ये पशुता वाली जो जिंदगी है सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन पर ही चलती है तो उसे ऊपर उठाती है। तो हमें जो सीखना है तो सीखने के लिए भी भगवान अपने को उदाहरण बनाकर आते हैं। तो रामचंद्र जी का जीवन चरित्र ऐसा है कि हम उसको अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का कभी अनुसरण नहीं कर सकते, उनकी तो सूचना का ही हमें अनुसरण करना पड़ता हो। इसलिए रामचंद्र जी ने कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन वो आदर्श जीवन सिर्फ बताकर गए। जबकि भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने इतनी सूचना दी है और कहा है कि हमारा अनुकरण मत करना, क्योंकि तू हमारी स्थिति पे आ ही नहीं सकता। मनुष्य जीव कभी भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उसका अंश है, अंश अंशी कैसे बन सकता है। इसीलिए हर एक मनुष्य जो भगवान का अंश है तो रामचंद्र जी का आदर्श पाकर वो अपनी दिव्यता प्रकट कर सकता है और दिव्य भाव से भगवान की निरंतर सेवा में जुड़ सकता है। इसलिए भगवान रामचंद्र जब अवतरित हुए तब इनके साथ असंख्य भक्तों भी अवतरित हुए। तो रामायण की जो एक कथा है वो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कहते हैं, परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन बाकी थे, 7 दिन में वे परम तत्व समझाने के लिए कितने दिन चले गए 7 दिन में से, ये तो 9वां स्कंध में सुखदेव गोस्वामी कहते, यानी कि पहले 8 स्कंधों में कितना समय लगा होगा। 9वें स्कंध में रामायण की ये बात करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और 10वां, 11वां और 12वां में तो सारा खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिनके पास 7 दिना भी नहीं बाकी रहा उनको रामायण का 9वां पारायण कैसे करावे, हैं? 9 दिनों का रामायण का 9वां होता है। सारी रामायण यदि कोई कहे तो 9 दिन लगे, पर वो तो क्या कहेगा, सिर्फ स्टोरी कह जाएगा लेकिन तत्व नहीं समझाएगा। इसलिए हमने जब श्रीमद् भागवत में 2-2 अध्याय रामचंद्र जी की लीला पर लिखे गए हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख द्वारा परीक्षित महाराज भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज विष्णुराट कहलाते, भगवान कृष्ण ने जब वो माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे, तब उनकी रक्षा की थी, और वो भगवान को देखने के लिए उसकी हमेशा नजर रही है। वो भगवान के इतने विशुद्ध भक्त और भगवत कृपा पा चुके थे, तभी तो उन्होंने कली को भी डांट मारी, धर्म का पालन करने के लिए योग्य व्यवस्थाएं सारे जन समाज के लिए की है, और उनको रामायण राम तत्व के बारे में जानने की क्या इच्छा हो? वो तो भगवान का अनुग्रह पा चुके थे, फिर भी लोग राम और कृष्ण में भेद करते हैं। वो उनकी दुर्बुद्धि के कारण, एक तो अकल है ही नहीं, फिर से ऊपर अपनी मनमानी करने के लिए जो शास्त्र में भगवान के बारे में जो बताया है, तो भगवत तत्व तो ना समझ करके वो अंदर अंदर भेद करते रहते हैं। ये भेद मिटाने के लिए परीक्षित महाराज को जब उन्होंने प्रश्न किया तो सुखदेव को स्वामी क्या कहते हैं जरा देख लो। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र जी के दिव्य कलाप कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य का दर्शन करने वाले ही भगवान रामचंद्र जी के जीवन में जो हमें सीखना है उसकी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो कथाएं कहकर हम सुनते ही रहते हैं, कथा चलती रहती है लेकिन हमारा कोई उद्धार होता नहीं। कथा सुनी सुनी फूटिया कान तो ये ना आयु ब्रह्मज्ञ। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं सुनो, कि उन साधु पुरुषों द्वारा भगवान रामचंद्र जी के दिव्य कार्यकलाप किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र जी के विषय में बारंबार सुन चुके हो, अतएव मैं इन कार्य कलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुनो। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रामचंद्र जी के विषय पर पीएचडी भी की है रामायण में, लेकिन भक्ति तत्व अपने जीवन में कितना उतरा है उसमें से वो तो खोपड़ी में ही रखते हैं। जीवन में भक्ति का व्यवहार बहुत कम दिखाई देता है, नहीं तो क्या हर एक जन समुदाय को भक्ति सीखने को नहीं मिलती कि कैसे करना है? रामचंद्र जी भगवान थे और सीता ने कैसी भक्ति की, लक्ष्मण ने कैसी भक्ति की, भरत शत्रुघ्न ने कैसी भक्ति की और हनुमान ने कैसी भक्ति की, दशरथ राजा वात्सल्य भाव से भगवान के साथ जुड़े थे तो उनकी भक्ति क्या है? रामचंद्र जी का विरह सहन न करके वो सीधे ही चले गए, लेकिन इसके पीछे एक वचन के खातर उन्होंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे भगवान बेटे हो ये होते हैं ऐसे वचन की कितनी महत्ता रखते हैं। भगवान इनके बेटे बनकर आए दशरथ राजा के, इनकी इच्छा थी बेटे थे ही नहीं, क्या क्या नहीं करना पड़ा, और भगवान बेटे बनकर आए फिर भी इन्होंने एक सिर्फ कैकेयी को दिए वचन पर देह त्याग करना, इसमें कितनी बड़ी बात। आजकल तो कोई वचन पालन करता ही नहीं, एक बार वचन दिया फिर जाता है। अरे भाई उस समय हमारी खोपड़ी में क्या आ गया, हमने दे दिया, अब नहीं कर पाते क्या है? क्या लोसुट लगाओगे? लेकिन इसके पीछे महत्ता क्या है देखो, आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट की डिग्री धारण होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति है। पहले भगवान तत्व जानते ही नहीं, वो तो कहते हैं भगवान होगा हमारे जैसे ही है ना, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिंतन उमाश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वर। भगवान का जो परम भाव, जो दिव्य भाव हो, वो न जानकर अपने में से एक मान लेते हैं। इसलिए हम लोग मूर्ख हैं, पहले वो सिद्ध करना पड़ता है। हम तो कभी अपने आप को मूर्ख समझते ही नहीं। अब भगवान को भी अपने में से एक मान लेते हैं और कैसे इनका अनुकरण करेंगे, क्योंकि इनकी शिक्षा धारण करेंगे। हमारे में विश्वास ही नहीं है कि भगवान कौन होते हैं। सही तो वो लोग रामचंद्र जी को पढ़े लिखे भी कहते हैं कि सामान्य मनुष्य जैसे, किंतु जो विद्वान है और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो उन तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों को वर्णन को ही स्वीकार करेंगे जो परम सत्य को जानते हैं। परम सत्य के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उसके पास जाना होता है। हाँ, हम रामायण की कथा करते कि कितना किसने गुरु किया, क्या परम तत्व की जानकारी प्राप्त हुई, तो अवश्य बारंबार कथा पूर्ण कान भी फूट जाएंगे, फिर भी हमें वो बिना मार्गदर्शन ज्ञान आएगा ही। तो ऐसी कथा सुनने से कम पुण्य कमा सकते हैं, पवित्रता नहीं आ सकती। पुण्य कमा सकते हैं, सुनना पुण्य ही होता है, लेकिन पुण्य की पोटली खत्म होती है उसका क्या है? जैसे बैंक बैलेंस होता है और खर्चा करो तो चला जाता है, दीवारा भी फूकता है। तो इसी ढंग से हमें ये बताते हैं कि भगवान कहते हैं, देखो वो परम तत्व भगवान के बारे में यदि जानना हो तो गुरु के पास जाओ। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षति तम ज्ञानम ज्ञाने न तत्व दर्शन। इसीलिए राम कथा तो सब कोई जानते हैं, लेकिन राम तत्व नहीं जानते। बिना राम तत्व जाने राम कथा सुनने का कोई फायदा इतना नहीं मिलेगा। हम मनुष्य छोटी जिंदगी में पूरा फायदा उठाओ, मुफ्त मिलता है। कंजूस मत बनो, भक्ति में आना है तो भक्ति का ये जो सत्य है, जो भगवान की पहचान कराता है, भगवान का दर्शन कराता है और भगवान के साथ अपना तादाद में और व्यवहार जोड़ देता है सनातन अवस्था में, वो तो सनातन धर्म की बुनियाद है। सनातन धर्म यहां पर स्थापित होता है, कहने से सनातनी मान लेते हैं तो, लेकिन व्यवहार सनातन करते नहीं तो फायदा क्या? तो इस ढंग से हमें समझना होता है। ये तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी, और यहां सुखदेव गोस्वामी भी तत्वदर्शी की बात करते हैं। तत्वदर्शी से ही राम कथा सुनना, जो तत्वदर्शी नहीं है वो भगवान का रहस्य नहीं बताएगा तो सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया। अरे यहां से शुरू कर देते हैं, जंगल में चले गए, कैसे पैदा हुए वो जानने की क्या आवश्यकता है, यूं कहोगे। पर लेकिन आप देखोगे रामचंद्र जी का जन्म काफी दिव्य है, सामान्य आदमियों जैसा जन्म नहीं। दशरथ राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया पुत्र की प्राप्ति के लिए, यज्ञ पति हाजिर हुए, उन्होंने खीर दी, खीर में कौशल्या को दी, सारा कटोरा दे दिया और अन्य रानी बाकी थी, दशरथ ने तो एक को ही दिया, लेकिन कौशल्या का हृदय कितना पवित्र है, उसने आधा ही लिया, आधी खीर सुमित्रा को दे दी, यानी कि आधे में से आधा वो लेती है और बाकी का कैकेयी को देती थी। कैकेयी ने भी लिया, लेकिन रामायण कहीं कहीं अलग अलग रामायण है, किसका माने क्या नहीं कर। उनका मूल लेखक कौन है? वाल्मीकि। वो कहते हैं, वाल्मीकि रामायण कहते हैं कि खीर का थोड़ा सा भाग एक वो बाज आकर उठा जाती है और अंजनी के गर्भ में डाल देती है, अंजनी के मुख में डाल देती है। तो उसमें से हनुमान पैदा हो, और इसका मतलब यह है कि पूर्ण तत्व का अंश, पूर्णता नहीं बताएगा, वो मर्यादा बताएगा। तो रामचंद्र जी इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम होकर आए हैं, भरत शत्रुघ्न इत्यादि वो पूर्णता के भी अंशांश है। यदि कौशल्या सारा कटोरा ले लेती तो भगवान रामचंद्र ही आते नहीं, भगवान अकेले नहीं आते, उनके साथ अपना सारा इनके द्वारा ही पैदा हुआ विस्तार लेकर आते हैं, चतुर्व्यूह कहते हैं, चार चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये वैकुंठ के नाम है, ये चतुर्व्यूह के नाम है। और यहां संकर्षण के रूप में कौन आए, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण शेषनाग का अवतार कहलाता है, सही ना। तो इनके द्वारा रामचंद्र जी की महत्ता पता चलेगा, रामचंद्र जी के बारे में जानना है तो लक्ष्मण, जैसे इनको समझ रहा है, इसलिए रामचंद्र जी को अकेले वनवास में जाने नहीं दिया है, कि रामचंद्र जी की जो भगवत्ता को पूर्ण समझना है तो लक्ष्मण ने जैसे सेवा की है, जैसे रामचंद्र जी का कहा मानता है उस ढंग से। तो लक्ष्मण इसी तरह भरत और शत्रुघ्न इत्यादि किस ढंग से भगवान की सेवा कर रहे हैं उस पर ही हमें नजर करनी चाहिए। बाकी की तो स्टोरी ही स्टोरी रहेगी, स्टोरी होती है, ये जो कथा होती है तो कथा में तत्व बिना रस नहीं मिलता, रस रस तत्व जानना होता है। तो रामचंद्र जी ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों का राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। सुपर्णखा की नाक तथा कान काट कर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी के से बिछुड़ गए, अतएव वे अपनी बौहें तान कर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी और तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें, एक ही श्लोक में रामायण, और वो भी प्रार्थना के रूप में। जिन्होंने इतने सारे कार्यकलाप करें वो भगवान हमारी रक्षा करें। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, और देखें तो अयोध्या नरेश ने भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। पता चल रहा है रात में जो विचरण कर रहा है वो तमोगुण के प्रभाव, अज्ञानता, गुमराह, उसे कोई अच्छे कार्य की कोई कोई नाइट शिफ्ट करता है यहां देखना तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में उन असुरों का वध किया, वो हमारी रक्षा करने की कृपा करें, ये दूसरी प्रार्थना करते हैं। रामचंद्र जी का तत्व जानकर सर्वप्रथम रामचंद्र जी का गुणगान उनकी प्रार्थना में आता है। हे राजन परीक्षित महाराज, भगवान रामचंद्र जी की लीला हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, इन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 100 व्यक्ति उठा लाए, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे अपने अकेले हाथ से मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे जैसे ही तोड़ा, जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। क्या चाहिए हमें? सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव। निसंदेह वे भगवान के वक्षस्थल पर सतत विराजमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र जी को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। परशुराम भगवान का अवतार कहलाता है और रामचंद्र जी भी भगवान का मर्यादा वाला अवतार कहलाता है। अरे एक अवतार दूसरे अवतार से लड़ते हैं क्या? पर लेकिन देखो, यदि क्षत्रिय होता है परशुराम, वैसे तो ब्राह्मण थे, जमदग्नि के पुत्र, उसमें क्षत्रियो का राजा उस समय कार्तवीर्य अर्जुन, उसे सहस्त्र अर्जुन भी कहते थे, उसकी दानत बगड़ी, जमदग्नि के पास कामधेनु भी थी, उसको चुराने का था, लेकिन ईर्ष्या के कारण उसने जमदग्नि की पत्नी यानी परशुराम की माता के साथ गलत व्यवहार किया। तो जमदग्नि उस समय तप करते थे, लेकिन उनको पता चला तो परशुराम को ऑर्डर दे दिया, जा बेटा उसको खत्म कर, और बाद में तेरी मां को खत्म कर। ब्राह्मण, लेकिन भगवान की शक्ति का आवेश का अवतार, क्योंकि ये उस समय यानी कि त्रेता युग की बात, त्रेता युग में जीवन का जो स्टैंडर्ड है बहुत बड़ा था। यज्ञ इत्यादि करने से भगवत प्राप्ति कराते थे, लेकिन परेशानी बहुत थी उस समय, आसानी नहीं थी, ईर्ष्या इत्यादि बहुत एक दूसरे से करते थे। राजा भी एक ब्राह्मण से ईर्ष्या करता था, राजा के पास क्या नहीं होता, फिर भी एक ब्राह्मण से ईर्ष्या करता था। लेकिन ब्राह्मण भी अपना जो तेज होता है ना, कभी कभी शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। तब परशुराम ने सिर्फ पिता का आज्ञा पालन करने के लिए अपनी फरसी उठाई और सारे को मारा, अरे भगाया, वो लोग आते बारंबार भगाते, 21 बार सारी धरती को क्षत्रिय बिना की कर दी थी परशुराम। अभी ये परशुराम में इतनी शक्ति का जब आवेश होता है तो कभी कभी उनसे भी ज्यादा दिव्यता के गुणों वाला भगवान का ही अवतार जब पैदा होता है, तो दिव्यता एक की दिव्यता दूसरे की दिव्यता को ढक देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और भगवान भी अंदर अपने आपस में अपने स्वरूप के साथ लड़ते हैं, ऐसा नहीं। ये तत्व परशुराम जैसा तत्व हम आज कहां करने जा रहे हैं। पहले तो एक को मारो, अरे मारने की बात ही क्या है, आजकल तो बच्चे को भी नहीं पीटा जाता, माँ बाप को भी जेल में जाना पड़ता है। अमेरिका में तो है कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। चाणक्य भी कह गया कि बच्चों को यदि सिखाना है तो जरा कड़क से काम करना, लालन पालन मत करना, नहीं तो सीखेगा ही नहीं। ये कलयुग बेकार है। वहां तो गवर्नमेंट कहती है कि यदि बच्चों को पर जो हाथ लगाया जेल में जाओगे, सही ना? अरे वाह। तो यहां हम देखते हैं कि ये कोई पनिशमेंट की बात नहीं, लेकिन भगवान की जो सत्ता है वो आदर्श के रूप में है। क्षत्रियों को भगाना 21 बार कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी ईर्ष्या या बड़ी सी ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या से लेने से फायदा क्या है? वो तो चालू ही रहेगा। ब्राह्मण और क्षत्रियों में ऐसे लड़ाई झगड़े ही होंगे। तो परशुराम अपनी शक्ति, परशुराम भी जानते थे कि ये तो भगवान का धनुष, लेकिन वो जीव तत्व है। परशुराम जीव तत्व है। एक जीव में भगवान की शक्ति का आवेश होकर वो बहुत अद्भुत कार्य कर सकता है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज भी जीव तत्व थे, हम सभी जीव तत्व है। जीव तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व, ये चार तत्व यानी कि चार सत्य हमें समझने की आवश्यकता होती है। सारे जीव, सारी शक्तियां भगवान के अंश होती है, भगवान की होती है, वो विष्णु तत्व कहलाता है। लेकिन जो जीव भगवान से विरोध इच्छा करके आता है तो वो भगवान के साथ नहीं रहता, क्योंकि वहां ईर्ष्या हो गई। यह भगवत गीता में आपको पता चलेगा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। हर एक जीव जो जो यहां ये विरोधाभासी दुनिया में आया है, ये दुनिया हमारी नहीं है। हम यहां कुछ चाहते हैं, होता ही कुछ और। हम अपनी मन की मन में ही रख ले, कोई सफलता नहीं प्राप्त होती। जहां देखो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम मेहनत करते ही हमें कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होता। सारे दिन गधे की तरह करते रहते मेहनत, लेकिन थोड़ा सा प्राप्त होता है, और वो भी हमारी कम बुद्धि के कारण हम ज्यादा बचा नहीं पाते, चला जाता। यानी कि हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। तो जो जीव तत्व है वो भगवान का सीधा अंश है, लेकिन अंश होते हुए भगवान जैसी उसकी गुणवत्ता है। भगवान सच्चिदानंद कहलाते हैं। हर एक जीव में सत चित और आनंद का गुण होते हैं, फिर भी वो बड़ा है, हम छोटे। हम इतने छोटे हैं कि हमारी कोई हस्ती ही नहीं, और इतने बड़े हैं वो जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा भेद होने के कारण, लेकिन इनका ही गुण होने के कारण हमें ईर्ष्या पैदा होती है, मैं भी इनके जैसा हूं तो मुझे उसकी क्या आवश्यकता है, मैं अपने आप सब कुछ कर सकता हूं। ऐसी परिस्थिति हम अपने परिवार में भी देखते हैं। बच्चा जैसा या बेटी जैसे बड़े हो गए, 12 साल के अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगते हैं और माँ बाप परेशानी पाते हैं। यह जीव का मूल स्वभाव ऐसा ईर्ष्यालु होने के कारण उसे सनातन अवस्था में भगवान से अलग होना पड़ा, उसको अलग रखने के लिए तो ये भौतिक सृष्टि बनाई है जो पैदा होती है, थोड़ी देर टिकती है, चली जाती है। ये सृष्टि में हम ये अपना शरीर भी जो पैदा होता है थोड़ी देर टिकता है और चला जाता है, लेकिन आत्मा के रूप में जीव तो वही का वही रहता है। बारंबार उसकी अज्ञानता जो ईर्ष्या के कारण है वो चालू रहती है। वो ईर्ष्या हमें छोड़नी चाहिए, भक्ति द्वारा छोड़ सकते हैं, ज्ञान द्वारा नहीं छोड़ सकते, ध्यान द्वारा नहीं छोड़ सकते, सिर्फ भगवान की शरणागत होकर ही छोड़ सकते। इसीलिए रामचंद्र जी की महिमा में भगवान रामचंद्र को शरणागत कौन हुआ है? क्या सीता भगवान के शरणागत थी? क्या लक्ष्मण भगवान के शरणागत था? क्या भरत शत्रुघ्न ने शरणागति स्वीकारी है? क्या हनुमान ने शरणागति स्वीकारी है? वहां देखो तो शरणागति में जो व्यवहार होता है वो भक्ति का होता है। जो अलग इच्छा करके व्यवहार करता है तो उसे तो पिटाई की पिटाई ही होगी। भगवान सीधे नहीं करते, भगवान की माया कर देती है जो भौतिक शक्ति है, तो वो शक्ति तत्व भगवान की परछाई कहलाती है, वो भगवान नहीं है। दुर्गा भगवान की शक्ति है, भगवान की सेविका, इसीलिए उसे नारायणी कहते हैं। यहां सीता माता दुर्गा नहीं है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति जो भगवान के हृदय में विराजमान है, जो आनंद की शक्ति है, जो उसकी अर्धांगनी बनकर आती है, जिसकी ईर्ष्या से हम भी अपने परिवारों से और खास करके पति पत्नी आनंद के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन आनंद साइड पे रह जाता है, हम कर्म के बोझे पर एक ऐसे फंस जाते हैं कि चाहे हम लाख करें अपना सुखी जीवन की अपेक्षा करते हैं, लेकिन बिना झगड़े बिना टंटा फिसाद कावा दावा बिना हो ही नहीं, कुछ नहीं सकता। और भूतवा भूतवा प्रलियते, इसी तरह बारंबार जन्म लेते हैं, बारंबार शादी करते हैं, बारंबार अलग होते हैं। कितने 84 लाखों योनियों में इसी तरह जीव फंसता रहता है, क्योंकि उसे अपने सत्य का परिचय नहीं है, अपनी असलियत का परिचय नहीं। असलियत का परिचय कराने के लिए तो भगवान आते हैं, वो परिचय करना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान तो बताते हैं इनको यथार्थ रूप में समझना। जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं व्यक्ति यो तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। जो मेरा जन्म और कर्म जो दिव्य है, तो आत्मा मेरा अंश होते वो दिव्यता तो रखता है, लेकिन कंजूस क्यों है? निकाल दिव्यता और दिव्यता से भगवान को पहचान करने की कोशिश कर तो अवश्य त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। हमारे जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। ये ज्ञान तो छोटा बच्चा भी प्राप्त कर सकता है, उसमें तो कुदरती स्वभाव है। तो यहां चार तत्व की बात बताते हैं। जीव तत्व, परशुराम जीव तत्व है, भगवान की शक्ति का उसमें संचार हो सकता है, लेकिन जीव तत्व भगवान को अधीन है। जहां यहां तो स्वयं भगवान रामचंद्र जी के रूप में आते हैं, तब बोलो कौन किस पर अधिकार जमा सकता है? 21 बार क्षत्रिय बिना की धरती परशुराम ने भगवान की शक्ति द्वारा की, इसलिए भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। भगवान का स्वांश नहीं है। अवतारों में भी इसी तरह साधु पुरुषों ने अलग अलग अवतारों की याद की है। देखो सर्वप्रथम पुरुषावतार होते हैं, पुरुषावतार विष्णु को कहते हैं। तो तीन तीन विष्णु की बात बताते हैं। भगवान का सर्वप्रथम पुरुषावतार कारणोदकशायी विष्णु, जो कारण रूपी समुद्र में लेटे हुए सिर्फ जो भौतिक सृष्टि अदृश्य थी उस पर दृष्टिपात करते हैं और उसको ब्रह्मांड पैदा करने की शक्ति देते हैं। उसमें ही दृष्टि में से हम जीवों को दाखिल करते हैं कि हमने भगवान विरोधी इच्छा की है ना, चलो जाओ उसमें, ये तुम्हारे लिए सृष्टि बना रहे हैं तो वहां जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने यदि इस कोई अपराध किया इस जीवन में तो जेल खाना तैयार है, जाओ ले जाना पड़ता है, हम स्वयं थोड़े चले जाते हैं। तो हमें भी इसी तरह ये भौतिक सृष्टि में जो बड़ा जेल खाना, दुर्गा दुर्ग यानी बड़ा किला जिसमें हमें बंधे जाए, तो ये बंधन हमें पहले ऐसे प्राप्त हुआ। अब बंधन में गलती करते बारंबार बंधन में आना ही पड़ेगा, जेल में छूटने का हमारा इरादा ही नहीं है। नहीं छूटना है क्योंकि हम यहां की पैदाश थोड़ी है। हाँ हमें नए नए कपड़े मिलेंगे, 84 लाख योनियां मिलती हैं, जैसी इच्छा। आज आपको टाई सूट पहनना है तो पहन सकते हो, मिलेगा यहां। कल सिर्फ एक लुंगी पहननी है तो वो भी मिलेगी। तो सुअर का शरीर, कुत्ते का शरीर, ये सब अलग अलग कपड़े हैं। ये नहीं कि ये शरीर मैं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसे शरीर को मैं संचालन कर रही हूं, लेकिन ये आत्मा भगवान का सीधा अंश है, यानी कि भगवान के साथ हर एक जीव का नाता है। सुअर कुकर का भी नाता है, इसलिए इनको मार कर खाना नहीं चाहिए, न तो चिकन को न तो कोई भी जीव की हत्या करनी चाहिए। भगवान का सीधा अंश है। ममई वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, मन मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन सहित 6 इंद्रियां हमें ये भौतिकता में खींचतान करती रहती है, लेकिन भगवान का अंश है हम, ये कभी मत भूलना। तो भगवान का अंश, भगवान की महत्ता जानकर ही भक्ति कर सकता है, लेकिन वो तत्व में उसे हमेशा रहना पड़ता है, उसे हमेशा याददाश्त बनानी रहती पड़ती है। याददाश्त बनाने के लिए ही हमें भगवान का नाम बारंबार लेना पड़ता है। बोलो हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा,
हरे कृष्णा
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 हरे हरे, हरे राम
हरे
राम
राम
राम हरे हरे
हरे हरे।
नहीं तो भूलने की आदत है ना, बारंबार भूल जाते हैं तो बारंबार याद रखना पड़ता है, हिसाब रोकड़ा। जो व्यक्ति भगवान का वफादार भक्त बनना चाहता है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई शरणागत करने वाला नहीं, हमें शरण देने वाला नहीं, न तो दुर्गा देती है लात मारकर भगाती है, जा पिता के पास, माता की गोद में कब तक खेलेगा, उठ बड़ा हो जानकारी प्राप्त कर। इसीलिए तो हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, नहीं तो सारी जिंदगी गोद में बिठाने का धंधा कैसे किसी को क्या ठीक रखता है क्या है? तो जो जानकारी हमें अपने शास्त्रों द्वारा मिलती है वो स्कूल में नहीं मिलेगी। इसलिए बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान यानी कि भक्ति का ज्ञान और कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र कराकर मंदिरों के साथ जुड़ना चाहिए। आप लोग यहां बनाते हैं, मंदिर हृदय में बनता है और बाहर अपनी शक्ति के अनुसार बनता है, लेकिन ये भी भगवान का घर है, उसमें परमात्मा के रूप में भगवान हमारी सारी चाल देखते रहते हैं, विटनेस करते रहते हैं। तो उनकी वफादारी करने वाले को वो ज्यादा सराहना करते हैं कि हाँ भैया चल तू जितनी शरण ले रहा है उतना ही मैं तुझे मिलूंगा। तो जो संपूर्ण शरणागत होता है तो क्या भगवान उसकी नहीं देखते? तो ऐसे तत्व पर विचार करना चाहिए और हमारी भक्ति आगे बढ़ानी चाहिए। हा? तो यहां हम देखते हैं कि एक सीधे सादे मामूले वचन पर इतना जीवन का त्याग और भगवान कुछ नहीं कर रहा। भगवान ऐसे ही मां को कैसे स्वीकारेगा जब पिता की मृत्यु बुलाती है? नहीं नहीं, रघुवीर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए फिर वचन न जाए। लेकिन ये वचन क्यों न जाए? ये वचन परम सत्य की उपासना करने वाले जब होते हैं तब उनके लिए प्राण त्याग करना भक्ति कहलाती है। तो दशरथ राजा पिता होते भक्त थे, रघुवंश की ये महत्ता है कि ये सभी दिव्यता धारण करने वाले हैं। पता है रघुवंश की शुरुआत की बात करते हैं ये सुखदेव गोस्वामी, तो सर्वप्रथम श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष राजा दशरथ हुए। ये उसकी वंशावली है। और खटवांग महाराज कौन थे? तो खटवांग महाराज ऐसे राजा थे जो कुरु वंश के भी चले आए। खटवांग महाराज देवताओं की ओर से लड़ते थे असुरों के साथ और ऐसे भगवान के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, तो देवताओं इन पर बहुत खुश थे। खटवांग महाराज मांगो मांगो क्या वरदान चाहिए तो खटवांग महाराज कहते हैं जरा बताइए मेरी मृत्यु कब आएगी? तो वे एक क्षण खटवांग राज तुरंत तैयार हो गए, भगवान का ध्यान करके भगवत धाम चले गए। जो एक क्षण भी भक्त बनने के लिए काफी होती है, तो हम अनेक जन्मों बाद भी भक्ति नहीं कर पाते उसका क्या? क्योंकि हम भगवान की तरफदारी वाला कोई काम करते ही नहीं। भगवान की अनुकूलता वाला यदि काम करे तो उसको भक्ति कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। यहां आप देखोगे कि रामचंद्र जी की कथा में भगवान का प्रतिकूल कौन हुआ? रावण और उसके पुत्र इंद्रजीत के अलावा कौन? कुंभकर्ण का तो कहना ही नहीं, क्योंकि उसमें अक्ल थी ही नहीं, सोता रहता था, उठाया तो भूख लगती थी इसलिए उन्होंने मारा सबको, लड़ने के लिए थोड़ा आया था। लेकिन न तो मंदोदरी न तो विभीषण, सही? और वो भी जो रावण था वो ब्राह्मण का बेटा था। ब्राह्मण कौन होता है पता है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जब भगवान को जानता है वो। हाँ ये तो दुष्ट निकला। इनको भगवान नहीं चाहिए, भगवान की पत्नी चाहिए। जब भगवान का ईर्ष्यालु होता है ना तो भगवान की सत्ता चाहता है, भगवान की शक्ति चाहता है सीता के रूप में। लेकिन उसके पास माया सीता ही आएगी और कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए असली सीता क्या चीज होती है? जब भगवान की अर्धांगिनी के लिए कौन लायक बनती, कोई पार्थिव सीता थोड़ी लायक बनेगी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाला शरीर वाली शक्ति या शरीर वाली कोई लड़की थोड़ी सीता बन सकती है। लेकिन ये भी यदि भगवान की भक्त हो तो सीता की दासी बन सकती है, सीता कोई नहीं बन सकता। तो क्या रावण सीता को ले जा सकता था, कोई ताकत थी? क्या ले गया? माया ही ले गया। तो सुखदेव गोस्वामी देखो क्या कहते हैं, सिर्फ एक परम सत्य यानी कि भगवान की सेवा का वचन के द्वारा कैकेयी को भक्ति करने का मौका था, तो तीन वचन में उसने क्या मांगा उसके बजाय, और उसका कान में कीड़ा डालने वाली कौन थी? मंथरा। ये मंथरा और मन जिसका तरल होता है यानी कि प्रवाहित होता है यानी कि वो स्थिर नहीं है, वो मंथरा। जिसका मन चंचल होता है, मन कंट्रोल में नहीं है, वो मंथरा। ऐसा कीड़ा डालती है ये मन, चंचल मन से हम भगवान से ईर्ष्या ही करेंगे, चंचल मन से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और चंचल मन किसका होता है? जिसकी इंद्रियां बेकाबू है उसका मन चंचल होता है। तो मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन सहित ये छह इंद्रियां यानी कि पांच इंद्रियां और मन छठा, तो छह इंद्रियां इस तरह हमें अपने आत्मा का खींचतान करती रहती है, रोंग इन्फॉर्मेशन देती रहती है। इसलिए हमें जन्म मरण के चक्कर काटने पड़ते हैं, नहीं तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। असल में तो ये जीव तो मेरा अंश है, तो मेरे साथ उसका संबंध पुनः जागृत कराने के लिए मैं गुरु को भेजता हूं जो तत्वदर्शी है, परम सत्य का जानकार। परम सत्य की जानकारी के लिए ही तो हमें ये सारी कथा इत्यादि दे जाती है, शिक्षा दे जाती है, नहीं तो कथा का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए सुनने वाले भी यदि परम तत्व की जानकारी के लिए ही कथा सुने, नहीं तो कान फूटेंगे फिर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा, सही? तो ये हकीकत हमें देती है। तो अपनी पत्नी के वचनों के बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य ऐश्वर्य मित्र शुभचिंतक निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। रामचंद्र जी को ये त्याग करते हुए कुछ भी नहीं हुआ, उनकी भावना परम सत्य पर ही बनी रही, क्यों वे स्वयं परम सत्य की मूर्ति थे। पिता के वचन वैसे बाहरी दृष्टि से तो बहुत मामूली दिखाई देंगे, नहीं मामूली नहीं, परम सत्य कभी मामूली नहीं होता। जो हमारी वास्तविकता खड़ी कर देता है वो परम सत्य मामूली कैसा? हमारा वास्तविक जीवन कि हम आत्मा है, तो आत्मा का मूल स्वभाव परमात्मा की सेवा करना है, उस पर कभी जिया जाता है क्या? हमारी सारी जिंदगी वैसे हम चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, ऐसी दशा है ना, बंधन में है ना, उसके लिए हमें कितनी छूट मिलती है? पुरुष कहें कि अरे मैं यदि भक्ति करने लगूं तो ये सब क्या करेंगे, हाँ अपने घर में बर्तन टकराएंगे और तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें नौकरी करनी ही पड़ती है। और स्त्रियां कहती हैं कि हम बच्चे का पालन न करके हम भक्ति करने बैठे तो खाना कौन पकाएगी, इनको स्कूल में कौन भेजेगी। लेकिन खाना पकाना भी भक्ति हो सकती है, स्कूल में भेजना भी भक्ति हो सकता है यदि भक्ति तत्व जाने तो, और नौकरी करना भी भक्ति हो सकता है यदि भगवान के साथ जुड़ाव करे तो। ऐसा नहीं कि कोई भी, लेकिन पहले से ही ईर्ष्या पड़ी है, भगवान तू वहां और मैं यहां, भगवान कहते कि नहीं तू मेरे अंदर है, मेरे में है, तू मेरा है, और हम उसे उल्टा ही व्यवहार करते हैं। परम सत्य तो ये है कि जो कुछ है सारे भगवान ने बनाया है, हा? और भगवान ने अपनी कृति को अपने अंदर ही रखी, भगवान की बाहर कुछ नहीं होता। ये भौतिक सृष्टि जो है, जो इतनी लंबी चौड़ी है, जिसका नाप आजकल के ये पीएचडी लोग भी नहीं जानते, कर ही नहीं पाएंगे। एक ब्रह्मांड, अरे एक पृथ्वी पर, अरे एक पृथ्वी एक देश, ये पापुआ न्यू गिनी है ना, उसमें कितने जीव जंतु हैं उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। पिछले साल दिसंबर में एक अखबार में आया कि पापुआ न्यू गिनी में अनेक जातियां निकली, इतने नए नए पक्षी दिखाई दिए, नए नए मेंढक दिखाई दिए, नई नई वनस्पतियां दिखाई दी जो साइंस को पता ही नहीं था। साइंस को क्या पता है, सारे संसार की जो सृष्टि है ये छोटा सा दिमाग में कैसे पता चलेगा, चाहे कंप्यूटर हाथ में दे दे, लेकिन सारी जानकारी तो कैसे प्राप्त हो, वो भी भौतिक सृष्टि की जो आने और जाने वाली है उसके बस में ही नहीं। जितना थोड़ा जानेगा सृष्टि चली जाएगी, वो चला जाएगा, जानना तो बाकी ही रहा। तो ऐसे व्यर्थ प्रयत्नों में हमें अपना जीवन गंवाकर भगवान पर हम तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं या ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, वो क्या मनुष्य जीने के लिए लायक है, क्या अधोगति के लिए ही लायक बने? लेकिन भगवान इतना दयालु है कि हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थान लिया है, उन्होंने अपनी कुर्सी बना रखी है, वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हमें अपने खुद को देखने की फुर्सत नहीं कि हम कौन हैं, हम तो सिर्फ शीशे में देखते हैं जो परावर्तित प्रतिबिंब दिखाई देता है, उससे हम अंदाज लगाते हैं कि मेरा नाक ऐसा है, मैं वो, लेकिन मैं नाक थोड़ा हूं, नाक मेरी असलियत थोड़ी है। कहने का मतलब है कि परम सत्य के अंश होते हैं, इनकी पहली जिम्मेदारी है कि परम सत्य के साथ संबंध पुनः स्थापित करें, और गुरु के, सदगुरु के द्वारा। जो स्थापित नहीं करता वो गुरु नहीं होता। तस्मात गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। अपना उत्तम से उत्तम हित अपनी खुद की जानकारी के लिए ही गुरु करने चाहिए, ऐसे नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा भौतिक। वह तो क्रिश्चियन लोग भी बहुत देते हैं, क्या चाहिए, बर्तन चाहिए दे देंगे, लेकिन क्रिश्चियन बन जाओ लेकिन भगवत्ता थोड़ी प्राप्त कराएंगे। उसी तरह अपने ही धर्म में ऐसे गुरु आए हैं जो कुछ न कुछ चमत्कार बता के हमने भगवान से दूर के दूर ही रखते हैं, और कहीं तो बहुत सारे अपने आप को भगवान कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित भगवान के विशुद्ध भक्त, उनकी जानकारी आजकल के ऐसे तथाकथित भगवानों के पास भी नहीं, इसलिए शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष धारण करके भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काट करके उसे क्रूर कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर त्रिशर तथा दूषण मुख्य थे। काम वासना से दूषित सुपर्ण खाती तो उसको क्रूर करना चाहिए। क्या हम अपनी काम वासना का नाक कान काट सकते हैं, क्रूर बना सकते हैं? यमुनाचार्य ने कहा है, जब जब मुझे काम वासना का विचार मन में पैदा, मैं पहले थूकता हूं उस पर कि सारा जीवन बर्बाद करने के लिए इतनी कंजूसाई सिर्फ काम वासना से पैदा होती है। और उसके लिए इतना बोझा सारी जिंदगी तक करते ही रहो गधे की तरह, छोटी सी काम। गधे का उदाहरण बहुत बार प्रभुपाद जी देते हैं। एक गधा जानता है कि घास सब जगह उगता है, नहीं घास खाने के लिए, अरे मैं तो दूसरा खिलाता है इसके पास जाऊं। सारे दिन धोबी का इतना वजन उठाकर जाता है और शाम को आकर उसे छोड़ देते हैं, थोड़ा खाना देता है, गदैया के पास जाता है काम वासना के लिए, और काम वासना से पहले गदैया मुंह पर लात मारती है। देखो कष्टान कामान अर्हते वीण भुजान, श्रीमद भागवत में ऋषभ देव वो भी भगवान के अवतार थे, उन्होंने भी अपने 100 बेटों को कहा कि नायम देह देह भाजान कष्टान कामान अर्हते वीण भुजान, तपो दिव्यम पुत्र गायन ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कि हे मेरे बेटो, आज कौन बाप कहता है अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देता ही नहीं। देखो हम कितने परेशान हैं, हम ऐसी शिक्षा क्यों दें, हमें पता ही नहीं। लेकिन ये बाप अपने 100 बेटों को कहता है कि हे मेरे प्यारे बेटो, हम ये देह नहीं है, न तो देह के भोगी है, जो आसानी से सुअर कुकर को जो भी प्राप्त होता है उसके लिए कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है? उसे बजाए दिव्य तप करो, जिसके द्वारा जो सुख की अपेक्षा कामवासना से करते हो वो ब्रह्म सुख में है, वहां नहीं है। वहां तो सिर्फ पिटाई ही पिटाई, गदैया की लात पहले पड़ेगी, वो माया की लात है। कृष्ण भूली गेला जीव भोगवांछा करे, माया तारे पाशे तेरे झापटिया डरे। माया पहले झापट मारती है, बदमाश। यानी कि हम एक दूसरे के बंधन की झापट खाते रहते हैं और कैसे निकले, हम कैसे उठे, हम तो देखो ना ये कल नौकरी का समय हो जाए, महाराज जी जल्दी करो तो। आप जल्दी कथा करो, टाइम हो रहा है, कल तो नौकरी जाना है, आपको फुर्सत है, हमें कहा है। सही ना? बच्चे को स्कूल भेजना है, जल्दी सुला देना है, ठीक है। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए, और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे। तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उस तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी अनुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे कि मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा है। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। ये शब्द सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है। विषय यदि हमारे हाथ में से चला जाता है तो हम विषय लोलुपता बताते, हम विषय से बिछुड़ जाते हैं। हम एक दूसरे के विषय हैं या एक दूसरे के पूरक। शादी से जब यज्ञ की सामने सात चक्कर काटे थे तो इसमें विषय की कोई बात नहीं आती। सप्तपदी करते हैं ना, जब मैरिज होता है यज्ञ की घूमना पड़ता है तो सप्तपदी में कोई विषय की चर्चा नहीं होती। वहां विष्णु के लिए क्या सेक्रीफाइस करोगे उसकी। यज्ञ विष्णु भगवान का प्रतीक है, उसके सामने शादी का प्रतिज्ञा लेवाते हैं। किसके लिए? एक दूसरे के पूरक बनने के लिए, एक दूसरे का विषय वासना का मूल बनने के लिए नहीं। तो यहां रामचंद्र जी ने भी ऐसी विषयाशक्ति बताने का प्रयत्न नहीं किया है, लेकिन मानो जैसे ये विरह कोई विषयाशक्त को हो रहा है, उसके पीछे श्री प्रभुपाद जो बताते हैं तात्पर्य में सुनो। इस श्लोक में स्त्री संगीनाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की भी से दशा प्रदर्शित की। नैतिक उपदेशों के अनुसार गृह नारी विवर्जित, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी को साथ में न ले जाए। पुराने जमाने में लोग बिना सवारी के यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो वह कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी न ले जाए। विशेषतः ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे, जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दिया गया, कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने निजी दृष्टांत से दिखाया। निसंदेह यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत के प्राणी नहीं है, वो अवतरित हुए हैं। हम लोग का कोई अवतार नहीं हुआ है यहां, हमें तो जबरदस्ती आना पड़ा है। और रोते, शास्त्र में कभी नहीं लिखा है कि जब भगवान आए न तो माता के गर्भ से आए हैं न तो रोते आए। ये तत्व है भगवान की आध्यात्मिक स्थिति है। हम यदि रोके नहीं आए तो जानबूझकर लगाते हैं रो, हंस के कैसे आता है देखो, कौन पैदा हुआ है? तो पैदा हुआ है हंस क्या है, अभी हंस रहा है, लेकिन जबरदस्ती से रोना, रोना नहीं चाहता, फिर भी रोना पड़ेगा। तेरे हाथ में रोना धोना भी नहीं, ये सब कुदरत की जबरदस्ती से काम होता है हम पर। नारायणो परो व्यक्तात्, नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। तो ये दिखाई देने वाला विरह रामचंद्र जी को सताता है क्या? हमारा तो जीवन बर्बाद कर देता है। पागल हो जाते हैं। नहीं तो यदि विरही लगता है तो मार गोली, तू नहीं तो और सही करके दूसरी ले लेते हो काम वास्ते, और तो क्या। सामान्यतया सीता से रामचंद्र जी का वियोग विप्रलंब माना जाता है, जो भगवान की लादिनी शक्ति की क्रिया है। भगवान की अंतरंग जो आनंद की शक्ति है, जो हम में भी है, उसकी क्रिया विप्रलंब अवस्था विरह में है। जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कर बताई थी, वह विप्रलंब अवस्था में ये वियोग में भगवान कभी बुलाए ही नहीं जाते, भगवान हार जाते हैं इसमें। ऐसी भक्तों की दशा जब होती है तो वो, और ये सिर्फ एक स्त्री के साथ बिछुड़ जाना, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। भगवान की लादिनी की जो शक्ति की क्रिया है, इसका श्रृंगार रस से संबंध है। श्रृंगार रस यानी कॉन्जुगल लव, अपनी शक्ति के साथ ही भगवान अपने आनंद के लिए चेष्टा करते हैं। तो अपनी शक्ति जब बिछुड़ जाती है तो भगवान के हृदय की तालावेली कितनी होनी चाहिए। लेकिन भगवान अपनी शक्ति से कैसे बिछुड़ सकते हैं? शक्ति और शक्तिमान में एक दूसरे के पूरक होते हैं, कभी बिछुड़ते होते ही नहीं। बिना शक्ति शक्तिमान कहना गलत है। इसीलिए यदि भगवान की सेवा करो तो भगवान की शक्ति के साथ ही सेवा करनी चाहिए। इसीलिए देखो सीताराम की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, ये भगवान की शक्ति है। शिव और पार्वती भगवान की परावर्तित शक्ति है, जो भौतिक शक्ति के अधिष्ठाता और भगवान ने गुणों में प्रवेश किया है। यानी कि ये शिव तत्व अलग पड़ता है। जैसे दूध और दही में क्या अंतर होता है, यूं देखो तो कुछ नहीं, दही तो दूध ही था, लेकिन जब अम्लता आती है, गुणों में प्रवेश होता है, तो वो दही का काम करते हैं। शिव जी को भगवान मूल रूप से नहीं कहते, परावर्तित रूप से कह सकते हैं। जो काम दूध करता है वो काम दही नहीं करता, जो दही करता है वो दूध नहीं करता। ये भौतिक दुनिया दूध ने बनाई, लेकिन भौतिक दुनिया चलाने के लिए दही बनना पड़ा। इसलिए भगवान शिव कृष्ण भगवान का गुणावतार कहलाते हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण का गुणावतार कहलाते हैं। हम पुरुष अवतार की बातें करते हैं, गुणावतार की बात आती है। बाद में मनवंतर अवतार आते हैं, मनु भगवान के अंश का अवतार। और कितने मनु, ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 मनु होते हैं, और मनु की संतान मानव होती है। तो मनु के वंशज में जो जो सभी ऋषि मुनिया इत्यादि, तो वो हमारे कुल के अधिपति बने, यानी कि हमारा क्या गोत्र है वो उन पर चला है। लेकिन हम मामूली कुत्ते जैसे जीवन जीते हैं, तो हमारे गोत्र की ख्याति कैसे। हमारे गोत्र में कोई भक्त बना या भगवान अवतार के रूप में आए, तभी तो हमारे वंश की खानदानी या असलियत बनी रहती है। हम अवतार नहीं है, कम से कम भक्त तो बन सकते हैं और अपने गोत्र का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ये भक्ति, ये भगवान के संबंध में है। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी ऐसी वंशावली दी है। हमने देखा, देखो परीक्षित महाराज ने चार वंश तो पहले ही बता दी, खटवांग महाराज से कौन हुआ, हाँ खटवांग महाराज का पुत्र दीर्घबाहु था, दीर्घबाहु का पुत्र रघु था और रघु का अज उत्पन्न हुआ और अज का बेटा दशरथ था और दशरथ का बेटा राम। हाँ? भगवान के ऐसे कुल में अवतरित होते हैं। भगवान तो आदि है सबके, फिर भी अपने भक्तों के साथ व्यवहार करने के वात्सल्य भाव लेकर भक्तों को पिता बनाते हैं। दशरथ महाराज भक्त हैं भगवान रामचंद्र जी के, उन्होंने बाप का रोल बजा है, पिता का रोल बजा है और भगवान अपने भक्त को ही पिता बनाते हैं, भक्त को ही अपनी शक्ति का आवेश देकर काम कराते हैं। हमें तो भक्ति के साथ काम है, भक्ति ही एकमात्र भगवान के साथ हमारा व्यवहार स्थापित कर सकती है। लेकिन भक्ति आवश्यक है, यदि उस आवश्यकता को हम महसूस नहीं करते, परिचय नहीं करते, तो भक्ति करने का कोई फायदा भी नहीं लगता। हमें आवश्यकता समझनी चाहिए, तब हम जल्दी फटाफट आगे बढ़ेंगे। सादी भाषा में कहें कि क्या भगवान के नाम लेने की आवश्यकता पता चलता है? आपके जीवन में भगवान के नाम की कोई महत्ता है? भगवान का नाम मुख से लेना भगवान की सेवा बराबर बताते हैं, तो क्या वो आवश्यक है? तो हरे कृष्णा महामंत्र क्यों नहीं जपोगे, नियमित क्यों नहीं भक्ति का जीवन बिताओगे? जीवन उद्धार करना, ये भौतिक विषय वासना की कंजूसाई में हम जानबूझकर अज्ञानता का व्यवहार करते रहें, उससे हमारा उद्धार कैसे होगा? हम ही अपने खुद के भविष्य का निर्माता है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर, सही ना? भगवान ने इतनी ताकत, इतनी अकलमंदी तो दी, जो समझ सकते हैं तो कर भी सकते हैं। बोलो हाथ ऊंचा करो, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे।
जो हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहते तो हाथ क्यों छोड़ दे, करो ऊपर, शाबाश, सबको माला पकड़ाओ,
कमाल आएंगे।
जय भगवान की माला करने में कभी शर्म नहीं रखना। भगवान का नाम लेने में जो शर्म करता है तो अपने आप को शर्मिंदा बनाएगा संसार में। जो भगवान का नाम लेता है नियमित रूप से तो इसके आत्मा में इतनी ताकत आती है, हा? तो वो बिल्कुल निडरता वाला जीवन बीते, भय बिल्कुल उसके हृदय में से चला जाएगा, ये गारंटी। यानी कि जो निर्भय रहकर जीवन जीता है तो जानकारी प्राप्त करेगा, नहीं तो भगवान का नाम लेते हैं मुझे कोई देख जाएगा तो हैं मैं कैसे नौकरी कर पाऊंगा, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, मैं भगवान का, अरे प्रहलाद भगवान का नाम लेता था, स्कूल में जाता था, हरि बोल भी करता था, अरे अपने अपने मित्रों को उठाता था कि चलो रिसेस हुई है हरी नाम करो, फालतू समय मत गवाओ, जीवन बहुत छुट्टा है, अरे इतना तो सबको पता है। लेकिन ये भगवान के नाम की ताकत हमें नाम द्वारा मिलती है। हमें तो सिर्फ नाम की सेवा ही करना है, इसलिए नाम सेवा का ये मंत्र है, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।